اور یہ واقعہ جو یہ سن 38 ہجری کا ہے 38 ہجری کا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا نام آپ نے کبھی سنا ہوگا. کون تھی حضرت اسماء؟ ابو بکر کی بیٹی تھی نا اسماء, لیکن یہ وہ اسماء نہیں ہے, یہ اسماء بنت امیس تھی, صحابیہ تھی, بس نام یاد کے. ان کے ایک بیٹے تھے محمد, محمد بن ابو بکر تھے. اصل میں حضرت اسماء کے پہلے شوہر جعفر تیار کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی شادی ابو بکر سے. یہ حضرت اسماء جو تھی حضرت ابو بکر کی بیوی تھی, بیٹی کا نام بھی اسماء تھا اور دوسری بیوی کا نام بھی تھا. مصر میں شہید ہو گئے اور جو دشمن تھے انہوں نے بچے کی لاش کو گدھے کی کھال میں بھر کے, یعنی کھال کے اندر رکھ کے اس کو جلا دیا. جب حضرت اسماء کو اپنی بیٹے کی اتنی دردناک موت کی خبر ملی تو شدت غم کی بنا پہ سکتے میں چلی گئی. پھر اس کے بعد کہنے لگی, بات تو بڑی صدمے کی ہے, لیکن ایک تو بچے کو قتل کیا گیا اور اس کا اتنا مسلح کرنا, یعنی اس کو اتنا ٹارچر دینا. کہتی یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت دل پھٹ رہا ہے, لیکن میں اپنے بچے کے اوپر اس سوچ سے صبر اور شکر کروں گی کہ میرے رب کو صبر اور شکر پسند ہے. مصلی بچھایا, نماز پڑھی, نوافل میں مصروف ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں. دیکھیے آج بھی اگر اللہ نہ کرے کسی پہ کوئی آزمائش, اللہ کبھی کسی کا جوان بچہ بچی نہ مرے نہ اس کو بیماری ہو, اچھا یہی لگتا ہے کہ بوڑھا باپ ہی جائے بیٹوں کے ہاتھ میں. یہ تو غیر فطری لگتا ہے نا کہ بوڑھے باپ موجود ہیں اور جوان جوان بچے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ کے نبی کی حدیث سچ ہو رہی ہے, قیامت کے قریب جوان جلدی جائیں گے. آج بھی بوڑھے کو اگر دل کا دورہ پڑتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے, لیکن جوان کو بچتا ہے تو وہ نہیں بچتا, کیونکہ اس کے جسم کی نیڈ زیادہ ہوتی ہے. ایسے وقتوں میں صبر صرف ایک ماں کرتی. آج کی ماں میں صبر ہے, صرف گھر میں دودھ ختم ہو جائے پھر ماں کا آپ صبر آزمائیے. پیمپر ختم ہو جائے, میاں کی جان پہ پڑ جائے گی, دفتر میں فون پہ فون, میسج پہ میسج, گھر میں ایک مہمان کے آ جائے جلدی کریں, کدھر ہے, پھنس گئے, ایک میسج آ رہا ہے, ایک میسج جا رہا ہے, اب صحیح ہو گیا, اب آ جائے, اب نہ آئے, اب سب ٹھیک ہے. یہ ہائپرزم ہے. دیکھیے بچیوں میں خاص طور پہ یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اپنے اوپر سہ جائیے. ہمارے انبیاء کرام کی ماؤں کی مثالیں لے لیجئے, صحابہ کی لے لیجئے, اسلاف کی لے لیجئے. ان کی مائیں جو تھی حقیقت میں اپنے اوپر سہ جاتی تھی. آپ ازمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر, آپ دیکھیے کہ جتنے مشہور کردار کے لوگ ہیں, مثلا امام بخاری رحمہ اللہ اکیلی ماؤں نے پالا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دنیا سے چلے گئے نا آپ سے پہلے, تو یہ تو چلے مہلت ہی کم ملی نا ان کو, 6 سال کی عمر میں چلی گئی. امام بخاری کی ماں نے اپنے بچے کو اکیلے پالا, شوہر انتقال کر گئے ان کی پریگنینسی کے دوران, اور کیا پالا کہ بچہ دیکھے دنیا میں ہدایت کا چراغ بن کے گیا. ماؤں میں بہت خوبیاں ہوتی تھی. اسی طرح ایک اور ماں تھی, خلافت راشدہ کا دور تھا, مدینہ منورہ کی ایک انصاری صحابیہ تھی, ان کا نام تھا ام عطیہ. اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیجتی ہیں, جاؤ اسلام کا دفاع کرو. بڑی خوش ہوئی, کہنے لگی میری خوشی بہت ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں جہاد میں کام آ رہا ہے. خیر وہ گئے, جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شہادت کا مقام لکھا ہوا تھا, وہاں شہید ہو گئے. میدان جنگ میں گئے تو اس سے پہلے کہ لڑائی ہوتی بیمار ہو گئے. اب آپ ذرا سوچیے, ایک بندہ ماں نے بھیجا ہے کہ جائے اسلام کے کام آئے, لیکن وہاں جا کے بھی لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا, بیمار ہو گیا, اور اتنے بیمار ہوئے کہ لڑ نہ سکے, واپس آ گئے. کسی طرح میدان جنگ سے نکلے تو بصرہ نام, جس کو آج ہم بصرہ کہتے ہیں, وہاں پہنچ گئے, کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا لے. خیر اب کیا ہوا, ماں کو پتا چل گیا. اب آپ سوچیے, اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو, آج کی ماں کیا کہے گی, شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں لے جاؤ, امریکہ لے جاؤ, کینیڈا لے جاؤ, آسٹریلیا لے جاؤ. ماں کو خبر ملی کہ میدان جنگ سے بچہ نکلا ہے اور اپنے علاج کے لیے دوسری طرف آ گیا. نکلی تو بسرا چل پڑی کہ جا کے میں دیکھوں گا کیا. اب آپ دیکھیں اللہ کا حکم, دیکھیے کہ ام عطیہ بھی پہنچی بھی نہیں تو بچہ فوت ہو گیا. بسرا پہنچی, ان کو پتا چلا کہ ان کا بیٹا اب دنیا میں نہیں رہا اور اس کو دفن بھی کر دیا. تو پھر کہنے لگی کہ میرے بیٹے نے جانا تو تھا, میدان جنگ میں نہیں گیا, بیماری میں گیا, پر میں اس بات پہ خوش ہوں کہ وہ اللہ کے راستے میں تھا اور اس کو موت ایسی اچھی جگہ پہ آئی کہ وہ اللہ کے ہاں شہید لکھا جائے گا. انا للہ وانا الیہ راجعون, کہا, صبر کیا. جب بیٹے کی ڈیتھ کو 3rd دن گزرا, دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے آج ہمارے کلچر کے اعتبار, صرف کلچر کی بات کر رہی ہوں, دین نہیں کچھ کہتا. اور 3rd دن ہوا, کسی کو بازار بھیجا, خوشبو منگائی, یعنی عطر یا پرفیوم منگایا, اور تعزیت کے لیے جو عورتیں آئی تھیں نا ان سے کہا کہ دل تو نہیں کرتا 3rd دن بچے کی موت کا, दिल तो नहीं करता, बट नबी सल्लम ने कहा कि किसी औरत पर शोहर के सिवा 3 दिन से ज्यादा सोग करने की इजाजत नहीं, तो मैं ये खुशबू मलकर अपना सोग खत्म करती हूँ। यानी आज के बाद कोई आके मुझे ये ना कहे कि तुम्हारा बेटा चला गया, तुम ये और वो और सरदार। ये सबर माओ में था, बच्चों में भी आता है। आज हम रस्म और रिवाज के नाम पे और हमने खानदानी बंदिशों के नाम पे बैठे होते हैं। फिर आप देखिए कि एक और चीज याद रखिए कि जो हमारे असलाफ की माएं थी ना, जो हमारे बड़ों की माएं थी कह लीजिए, उनमें अल्लाह के हुक्म को मानने का और इसी तरह से अपने बच्चों के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को डालने का कूट कूट कर जज्बा भरा हुआ था। लोरियां देती थी तो उनको मुजाहिदीन के किस्से सुनाती थी, नबी सल्लम का प्यार सिखाती थी। मुआविज़ और मुआज़ दो बच्चे थे अफरा नाम की एक औरत के, दोनों नबी सल्लम की मोहब्बत में चूर थे। जब वो गज़वे बदर में गए, कहते थे हमारी माँ बताती है कि अबू जाहल नबी सल्लम को गाली देता था, तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे नबी को कोई गाली दे, हम आज उससे निपटेंगे। अब ये तो मैदान जंग के किस्से है ना, आप और मैं सिर्फ चंद बातों से इम्तिहान लें। आज घर जाकर अपने टीनेजर बच्चे, छोटों की बात नहीं करती, टीनेजर बच्चों से 10 सहाबे किराम के नाम पूछे, नबी सल्लम के बच्चों के नाम पूछिए, नबी सल्लम के अपने प्यारे नामों में से 5 नाम पूछ लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी में जो 5 साल मक्का के या 5 साल मदीना के, उसमें क्या हुआ तरतीब से बता दें। जिन माओ ने तो मेहनत की हुई है, बच्चों को स्कूलों में भेजा, सीरत सिखाई, जिन्होंने कुरान पढ़ा, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बताएंगे, लेकिन बाकी बच्चों को नहीं पता। कई टीचर्स मैंने खुद पूछा अपने साथियों से, सारे दिन रात बच्चों के साथ चलता है हमारे मामला, कि जब बच्चे स्कूल में आते हैं उनको कलमा भी नहीं आता। कल एक मीटिंग में माएं बता रही थी कि कुछ बच्चे 6 साल पहले आए हैं, उनकी माएं भी कहती हैं और खुद भी कि जमीन से आसमान का फर्क पड़ गया उन बच्चों के एटीट्यूड में, उनके अखलाक में। क्यों पड़ गए? क्योंकि बच्चों को माहौल मिलता, बच्चे सीखते हैं। आप देखिए मेरी आपकी सबसे कीमती चीज क्या है? गाड़ी जो बाहर खड़ी है, घड़ी जो पहनी है, ये फोन जो रखा हुआ है, घर जिसमें रह रहे हैं, ये दुनिया की चीजें हैं। इनमें कुछ भी नहीं होगा ना हमें, फिर भी इंशाल्लाह कुछ मसला नहीं होगा, लेकिन सबसे कीमती चीज हमारी औलाद है। अपने बच्चों के लिए अपने मुस्तकबिल को दांव पे नहीं लगाना, और बच्चा हमेशा वो काम करना पसंद करता है जो माँ खुद करती है। आप लिखने बैठी है, बच्चा भी आके आपसे कागज मांगेगा। माँ रोटी पकाती है, बच्ची भी आके कहती है मुझे भी आटा दो। अगर हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों में सुकून इत्मीनान हो, वो खुशी का जरिया हो, तो फिर उसके लिए हमें भी अपने आप को दरपेश करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर क्लास का स्केड्यूल इस सोच के साथ सेट किया जाता है कि बच्चे भी आए साथ ही तो माएं भी आए। एक तरफ बच्चे अपनी एज की चीजों को सीख लें, माएं अपनी एज को सीख लें। चलिए यंग बच्चियों को उर्दू मुश्किल लगती है, वो नॉर्वेजियन में कुछ सीख लें। आप देखेंगे कि जैसे गाड़ी होती है ना, स्टेयरिंग पे कोई बैठता है, जिधर गाड़ी का स्टेयरिंग मुड़ता है, साथ वाली सीट पे बैठा भी उधर मुड़ेगा, और जो पीछे बड़ी सीट है उस पे भी बैठे सब साथ ही मुड़ेंगे ना। स्टेयरिंग औरत है, बहुत गलती है हमारी, हम कहते हैं औरत नहीं मर्द चलाता है, मर्द हमारा कोऑर्डिनेटर होता है। जैसे बादशाह और वजीर है ना, आप उसको समझिए, बादशाह है मर्द माशाल्लाह, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, कमा बना, लेकिन घर चलाने वाली वजीर औरत ही होती है। और मेरा नहीं ख्याल कि आप और मैं ये कहें कि मेरे हस्बैंड मेरी नहीं मानते, औरत चाहे तो क्या नहीं करा सकती। औरतों ने जंगें कराई, औरतों ने सुलह करवाई, औरतों ने बादशाहों को फकीर बना दिया। औरत के पास अल्लाह ने बहुत ताकत रखी है अपने मर्द को मनाने की, यकीन कीजिए। ये अपने दिल से भी ख्याल निकाल दें कि हमारे शोहर हमारी नहीं मानते, वो कोई एक आधा कोई ऐसा कोई केस रेयर हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट, या वो औरत ही ना समझदार हो। औरत समझदार हो तो मर्द जरूर उसकी मानता है। करना क्या है कि हमने गैर मखसूस तरीके से अपने घर वालों को लेकर चलना है। किस में लेकर चलना है कि आपने इस चीज को सीखना है, वरना आप देखिए जरा से इमेजिन करें, सोच के भी दिल बंद होता है, हम जन्नत में जाएं और बच्चे वहां पहुंचे नहीं, वो जन्नत जन्नत लगेगी कि जन्नत में हमारे बच्चे ही नहीं है, शोहर नहीं है। आज दुनिया में आप कहीं घूमने जाए, आपको अकेले मजा नहीं आता, आप अच्छी चीज खाए, आप वहां बैठ के अपने घर वालों को याद करते हैं, कहां वो जन्नत की नेमतें के फला तालम नफ्सुम माफी लहु मिन कुर्रति आयुन। करना क्या है, प्रायोरिटाइज करें। असलाफ की माओ में और आज की माओ में जो बुनियादी फर्क ये है, बहुत अहम फर्क है। कसूर माँ का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माएं बहुत अच्छी हैं, बट वो बेचारी बहुत सारी चीजों में बटी हुई हैं। पहली माएं, उनका एक बुनियादी काम था तरबियत एतबार, घरदारी और बच्चों को देखना, ऐसे ही था एक काम था। अब एक काम आप करें तो बहुत अच्छा करेंगे, ये आप खुद भी जानते हैं। और अगर इकट्ठे छह सात काम डाल लें तो या कभी दूध उबल जाएगा, तो या कपड़ा जल जाएगा, तो या कभी कुछ और हो जाएगा। आज की माओं को काम बहुत है। आज हमारी तरबियत का अंदाज ऐसा बन गया कि बच्चा लड़का है या लड़की, दोनों की तरबियत में फर्क नहीं रहा, सेम डगर पे दोनों चल रहे हैं। हालांकि दोनों का रोल जिंदगी में क्या है, ये टेबल, ये चेयर, ये सारा सेटअप अब स्मूथली चल रहा है ना। क्यों, कुर्सी जहां होनी चाहिए थी वही है, मेज को जितना ऊंचा होना चाहिए था उतना आगे। घर में एक मर्द और औरत के, औरत कुर्सी है सॉफ्ट है, मुड़ी हुई है, थोड़ी सी नीची है, मेज सख्त है और ऊंचा है, ये मर्द है, ये औरत है। जिस घर में शौहर बीवी के ताल्लुक में, किसी भी रिश्ते में अगर मियां बीवी इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, बीवी को सिर्फ एक चीज एक्सेप्ट करनी है, क्या, अलैहिन न दरजा। कुरान में आता है कि मर्द को सिर्फ एक दर्जा औरत से ऊपर की है। यानी अगर आप 50-50 ना के लोग कहते इक्वालिटी, आज मैंने पेम्पर बदला तो कल तुम बदलो। कई बीवियां अपने मर्दों से बहस करती हैं, सारा दिन मैं बच्चे को देखती हूँ, रात को तुम देखो, आज पेम्पर मैंने बदले हैं कल तुम बदलो। तो भाई वो बेचारा कमा के आया, सुबह का निकला, आप घर में थी, लेकिन मसला ये कि माँ भी जॉब करती है, तो फिर वो बराबरी पे आ जाती है। ये एक्सेप्ट कर लीजिए घरों में, मर्द को एक हाथ ऊपर रखिए, इज्जत दे दे। आप अपने शौहर को अपने घर का बादशाह बना ले तो आप मलका बन जाएंगी, बादशाह की बीवी मलका ही होती है। और आप शौहर को गुलाम बनाए तो आप गुलाम की बीवी हैं। जो औरत अपने मर्द की इज्जत नहीं करेगी, याद रखिए, ना उसकी इज्जत होगी और बच्चों में भी प्रॉब्लम क्यों आएंगे। हर दिन यकीन करें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं हमारे साथ, हम कभी बारने वान, कभी बारने यम, कभी वो, कभी बारने हागे, ये लोग अपनी ऑफर्स लाते हैं, बताते हैं, मैं तो सीखने के लिए पूछती हूँ। इतने मसले क्यों है इस सोसाइटी में, और इस सोसाइटी से मेरा नॉर्मल नहीं है, सॉरी, पूरी दुनिया का वेस्ट जो आज वेलफेयर की बेस पे चल रहा है, जो ब्रोकन फैमिलीज को सपोर्ट करता है, जो क्राइसिस सेंटर को सपोर्ट करता है, आप हैरान हो जाएंगे कि आप जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, जो जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं, आपका मोस्ट ऑफ द टैक्स सिर्फ ये ब्रोकन फैमिलीज के बच्चों और औरतों को सर्व करने में गवर्नमेंट का लग रहा है। एक एक बच्चा जो ब्रोकन फैमिली से जाता है किसी बरने यम में कहीं, उसका एक एक दिन का हजारों करोन गवर्नमेंट देती है। आपके घर में छह बच्चे हैं, माशाल्लाह सातवां भी आ जाए मुफ्त में पल जाता, ऐसे ही है ना, बच्चे तो एक जगह, लेकिन जब फैमिली टूटती है, औरत को लग सपोर्ट करते हैं, उसको घर दें, उसको करें, मर्द बेचारा अकेला हो गया, अब बच्चे कभी इधर, एक तो बच्चे टूट गए, ये कोई जिंदगी है कि आधा दिन उधर तो आधा उधर, वीकेंड इधर वीकडेज इधर, उधर वाले भी उसको उसके खिलाफ कर देंगे, इधर वाले भी करेंगे, आप वो मेन सोर्स क्यों नहीं ढूंढते कि फैमिलियां टूटे ना। जैसे आप देखिए कि कहीं पहाड़ी है ना, तो उसके साथ खाई है, अब कोई कहे कि इस खाई में कभी ना कभी लोग गिरते ही जाएंगे, तो हम इधर एक हॉस्पिटल बना देते हैं, एक एम्बुलेंस ले लेते हैं, फिर साथ हॉस्पिटल बना देते हैं, तो जो ही कोई गिरे उसको उठाए, एम्बुलेंस में डालें, हॉस्पिटल में ले जाए। हम जैसे लोग देख के क्या कहेंगे, कितना अच्छा इंतजाम है इनका, हर गिरने वाले को फौरन ले जाते हैं और बड़ी अच्छी टेक केयर करते हैं, हम इम्प्रेस होंगे। दूसरी सूरत यह है कि आप थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करें तो इस खड्डे को ही बंद कर दें जिसमें लोग गिर रहे हैं। आप मुझे बताइए अक्लमंदी कौन सी है, पहला कि दूसरा? दूसरा, बस इस्लाम का तरीका दूसरा है। वो लूप होल्स बंद कर, घर क्यों टूटते हैं, बच्चे क्यों परेशान है। और यकीन करें हमारी मीटिंग में उन सिस्टर ने हमें बताया कि बारने यम, तो आप समझते ही है ना, बारने यम वाले खुद इकरार करते हैं कि जिन बच्चों को हम इधर पालते हैं वो सोसाइटी का सेहतमंद हिस्सा नहीं बनते, वो बच्चे अब नॉर्मल है, ना माँ पास ना बाप पास। आप रोज हजारों दे, उनके पास साइकाट्रिस्ट हो, उनके पास डॉक्टर हो, वॉक के ऊपर आप ले जाए, यानी कोई आसान काम है, लेकिन वो सब कुछ क्या है कि उसके बाद वो कहते हैं वो बच्चे सेहतमंद शहरी फिर भी नहीं बनेंगे, क्यों, फितरत से काटा आपने। तो अगर बच्चियों में सब्र हो, बच्चों में सब्र हो, घर नहीं टूटेंगे। आप देखिए हर टूटते हुए घर के पीछे एक बेसब्री होगी, और सबसे ज्यादा उसको सफर करते हैं तो बच्चे करते हैं। بچوں کے اوپر آج کے دور میں اگر آپ نے میں نے رحم کرنا ہے نا تو ہمیں ماں باپ کی تربیت کرنی پڑے گی. بچوں کو شادی سے پہلے ایک کورس کرنا چاہیے. میں ہمیشہ اس بات پہ بات کرتی ہوں اور الحمدللہ جو ہمارے بس میں تعلیم تو دیتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ لوگ شادی سے پہلے اور بھی مصروف ہو جاتے ہیں, اتنے کام ہے کہ وہ گراتے بھی ہیں کلاسوں میں درسوں میں تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. شادی ہو رہی ہے 6 ماہ پہلے, سال پہلے تیاری ہوگی, اور یقین کریں میں نے اس پچھلے مہینے میں کوئی 3-4 منگنیوں کے ٹوٹنے کا سنا ہے. سننے سے مراد کہ مشورہ ان کا کہ جو شادی کی پوری تیاری کر چکے ہیں, پاکستان کے چکر میں نے خود دیکھے ہیں, لگ چکے ہیں, لیکن دو تو میں کسنیاں کہہ سکتی ہوں, میں نے دو انہی دنوں میں سنی ہے کہ شادی بالکل قریب ہے لیکن اب اخیر نہیں ہونی. تو وہ دیکھیے گا وہ 50 جوڑے بھی ضائع ہوں گے جو اس لڑکی کے نام کے بنے ہوئے تھے, دوسری لڑکی وہ نہیں پہنے گی, اور لڑکی نے اپنے گھر سے جو بنایا اس میں اگلے 6 ماہ میں فیشن بدل جانا ہے, چھوٹی نے بڑا ہو جانا ہے, بڑی نے چھوٹا ہو جانا ہے, اور پھر وہ جوڑے بھی ضائع ہوں گے. ایک منگنی شادی ٹوٹتی ہے کئی لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ نئی شادی پہ نئے جذبے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس لیے دنیا میں آئے؟ کیا ہماری زندگیاں یہ؟ آج آنکھ بند ہو, کیا آپ نے کبھی نہیں سنا کہ ینگ بچی اور ینگ بچہ اپنی عین جوانی میں اپنا پورا جس کو کہنا چاہیے کہ اسٹیٹس سیٹ کرنے کے بعد ڈائگنوزڈ کینسر دنیا سے جا رہے ہیں, چلے گئے, کسی کے کان میں درد, کسی کے ہاتھ میں درد, کتنا عام ہو گیا. اللہ بچا کے رکھے. اکثر ہم بولتے ہیں کہ ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, میں کہتی آج یہ جملہ بولے کہ ہمارے بچوں میں سے کوئی مر گیا تو اس کا کیا ہوگا. کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے بچے مرتے ہیں؟ ہم تو سروائیو کر لیں گے ان کے بعد بھی, دنیا میں بہت مصروفیت ہے, ان کی تو زندگی ختم, ان کا ٹینڈ ختم. آپ دنیا میں چاند پہ پہنچے, ستاروں پہ کمندے ڈالے, آپ دنیا میں بام عروج پہ پہنچے, اللہ آپ کو نہیں روکتا, لیکن اگر آپ اللہ کی نظروں میں کامیاب نہیں ہیں, آپ کا جوان بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ہے ہی علی الصلاح, ہے ہی علی الفلاح کو تو دن میں آپ نے 5 دفعہ ٹکرا دیا, میں کہہ سکتی ہوں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. 50,000 کرون کی پے مل جائے گی اس کو, اس کا گھر بڑا بن جائے گا, وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا, لیکن وہ سکسیزفل نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کیونکہ اب بات ماؤں پہ ہو رہی ہے نا, ماں بچے کی, تو میں ایک مثال دینا چاہتی ہوں. چند دن پہلے میری کسی اپنی ساتھی ہماری بہت اچھی, تو ان کی بچیاں بھی ینگ ہو رہی ہیں, تو مجھ سے وہ کوئی بات شیئر کر رہی تھی, تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو بیٹا, ہم نے اینڈ پہ کسی کو کچھ بنانا ہوتا ہے نا, اس کو پہلے سامنے رکھتے ہیں نا. مثال ہے کھانا پکاتے ہوئے بھی ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ اینڈ پہ بریانی بننی ہے, تو پروسیس بھی ویسے ہی شروع کرتے ہیں. فرق ہے نا بریانی اور پلاؤ کا طریقہ, تھوڑا سا تو مجھے بھی آتا ہے, فرق ہے نا. اب ہم نے اینڈ پہ جو بنانا ہے اس کو دیکھ کر طریقہ کار شروع کرتے ہیں. کیک بنانا ہے آپ نے یا اپنے بسکٹ یا کوکیز بنانی ہے, فرق ہے. آج جا کے گھر بیٹھ کے ہم سب سوچیں, بچیاں بھی سوچیں, مائیں بھی سوچیں, اینڈ پہ اس بچی کو میں نے کہاں لگانا ہے. اور یہ ہمارے کلچر کی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا نون رول ہے کہ ایک سکسیزفل بچی کون ہے, کہ جو شادی کے بعد اچھی بیوی, اچھی بہو, اچھی ماں, اور اس کے بعد اپنے روابط میں, معاشرتی معاملات میں ٹھیک ہو. آپ میں سے کسی کو بھی اس پہ اختلاف ہے آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. ایک بچی جو آج آپ کی کسی کی گود میں پیدا ہوتی ہے 15 سے 20 سال کے بعد, اس کی الٹیمیٹ سکسیس کیا ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی بن چکی ہو, اگلے سالوں میں وہ اچھی بیوی اچھی ماں بن جائے, اور 5-6 سال اور گزر جائیں تو لوگ مثالیں دیں اس کے بچے بڑے رولی ہیں, اس کے بچے بڑے اچھے ہیں. کیا سچ بتائیں ہماری بچیوں کا یا ہم خود بھی اسی میں, کیا ہمارا الٹیمیٹ گول ایک اچھی ماں اور اچھی بیوی بننا نہیں ہے؟ یہ بیچ کے رشتے ہوتے ہیں, اچھی بہن اچھی بہو, یہ ہر ایک کو موقع نہیں ملتا. کبھی کوئی کسی کے بہن بھائی نہیں ہوتے, کسی کے ساس سسر نہیں بھی ہوتے, اور یہ سب سائڈ ایشوز ہیں. اگر میں ایک اچھی بیوی نہیں ہوں تو میں ایک کامیاب عورت نہیں ہوں. ساری دنیا میرے گن گائے, ساری دنیا میری تعریفیں کریں, آدھی دنیا مجھے جاننے لگ جائے, مجھے روز 100 لوگ میسج کریں, واللہ کہ اگر میرا شوہر مجھ سے خوش نہیں ہے تو میں کامیاب عورت نہیں ہوں. آج آپ دیکھیں بڑی بڑی عورتیں فن کے نام پہ, فیم کے نام پہ, شادی ہوئی ٹوٹی, شادی ہوئی ٹوٹی, ناکامیوں پہ ناکامیاں. میں سوچتی ہوں اس کے 1000 فین ہیں تو ایک میاں اس کا فین کیوں نہ بنا, کیونکہ میاں سکرین پہ دیکھتے ہوئے نہیں فین ہوتے, وہ آپ کی میری ذاتی زندگی سے فین ہوتے ہیں. آج گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ एक शोहर बेचारा थका मांदा घर में आता है, बीवी की टोन ऐसी है कि जैसे वो अपने किसी भाई से बात कर रही है या अपने किसी बराबर से कि तुम ये करो, तुम ये, तुमसे ऊपर तो बात ही नहीं उठती। सच बताइए, नाम लेते थे लोग आज से पहले? आप कहते थे, फिर बच्चा हो जाता था तो अब बच्चा फलां के अब्बा। मैं इस बहस में नहीं पड़ती, ये ऑकवर्डनेस है, ये पुरानी बातें छोड़ दीजिए। याद रखिए कि घरों में सुकून था। वो अब्बा जी इतने गुस्से वाले थे, घर आके धन 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 करते थे, लेकिन वो घर कभी क्राइसिस सेंटर नहीं गया, वो बीवी नहीं गई, वो बच्चे उठ के किसी बार नहीं अम्मे नहीं गए। घर चल जाता था, निभ जाता था। 2-4-10 साल बाद शोहरों को भी समझ आ जाती थी कि यही है जिसने मरी सहनी थी, और बीवी भी कहती थी कि चलो ग्रोब डालता है, फिर भी बात में थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा हो ही जाता, गुजर जाती थी। अब गुजरती नहीं है। शादी के 2 साल बाद के इतने खतरनाक हो गए हैं, इतने खतरनाक हैं कि पहले तो ये खबर होती थी ना कि अच्छा अब उम्मीद है कि नहीं, लोग ये पूछते थे, और अब क्या, दिल मिले हैं कि नहीं मिले, खुश है नहीं, और 90% अंदर से खोखला पड़ा है। वजह क्या है? वो प्रोसेस ठीक नहीं है जिसपे बिरयानी बननी थी। पकाना बिरयानी चाह रहे हैं और तरीकेकार हमने खिचड़ी का बनाया होगा, चले ज्यादा से ज्यादा। और हम चूंकि खवातीन है और आप मेरी मुखातिब खवातीन ही है, मैं मर्दों और लड़कों को ज्यादा नहीं डिस्कस करती, वरना मैंने वो डिस्कस किया तो आज जाके आपके भी घरों में लड़ाई होगी, मेरे भी होगी। आप दूसरों की बातें सुन के जाएंगे, आप कहेंगे मियाँ ऐसा होना चाहिए और बेटा ऐसा होना चाहिए, तो वो तो हम नहीं कर सकते। कम अज कम अगर मैं अपना हिस्सा अगर देख लूं, आज आप देखेंगे जब मेरे अंदर सब्र आ जाएगा, एक बीवी होने के नाते कभी नहीं हो सकता मेरे बच्चे में सब्र ना है। माँ के अंदर से रेज उठती है, माँ के अंदर से बच्चा, आधी ट्रेनिंग तो अंदर से लेके आया होता है। बच्चों को कम अहमियत दें, सब्र लाना है उनको कम अहमियत दें, अल्लाह पर डाले। मूसा की माँ ने दरिया में डाल दिया और बच्चा बच गया, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा बच्चा मैं ही पालूंगी। एक आलिम दीन की बात अक्सर मैं कोट करती हूँ, मैंने बहुत ही पहले पढ़ा और मुझे उनका बात बहुत अच्छी लगी। एक माँ अमेरिका की बात है ये, वहां थी तो उन्होंने अपना किस्सा सुनाया कि किसी भी दीन के स्कॉलर थे तो उनको जाकर उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में रहते हैं, हम अपने बच्चों पे मेहनत भी करते हैं, जहां भी ले जाती हूँ वो भी करती हूँ, ये भी वो, यानी पूरी उसने अपनी एक्टिविटीज बताई। इसके बावजूद दिल को धड़का लगा हुआ है कि माहौल में बच्चे घुल मिल ना जाएं और चेंज ना हो। आप मुझे मशवरा दें मैं क्या करूं, मैं सऊदी अरब मूव हो जाऊं, मैं पाकिस्तान चली जाऊं, कुछ इस किस्म का जो बहुत सारे वेस्टर्न पेरेंट्स पूछते रहते हैं। तो उन्होंने एक जुमला बोला था, उन्होंने कहा कि आप जैसी तड़प रखने वाली माँ का बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा इंशाल्लाह, आप तड़पती रहे, बस सीधी सी बात है। आप इसको एक मिसाल से समझें, आप देखिए कि जिसको तैरना नहीं आता, आप उसको अगर स्विमिंग पूल में भी धक्का दे देंगे तो 6-7 गोते खाएगा, अगर कोई नहीं बचाएगा तो उसमें भी डूब जाएगा। आप उसको दरिया में धक्का देंगे तो भी डूबेगा, और अगर समंदर में भी धक्का देंगे तो भी डूबेगा। खरे क्या, तैरना सिखाते हैं, ऐसी है ना। हम आप जो वेस्ट में रहते हैं ना, मोस्टली हम बुराई के समंदर में रह रहे हैं, इट्स ट्रू, इसमें कोई झूठ नहीं है, जो कहता नहीं है वो गलत कहता है। जिस तेजी से आपके हमारे बच्चों के अफकार, उनकी सोचें बदली जा रही हैं, आप हैरान होंगे। यहाँ आपके इस मुल्क की माओ में से मुझे एक माँ ने खुद बताया कि जब वो खुद इधर पढ़ती थी, जो फिल्म या जो वीडियो या जो टॉपिक 7th ग्रेड में उनको सिखाया पढ़ाया गया था, खुद इस मुल्क में, इस मुल्क में उनके 12वें हागे के बाद जो पहला साल शुरू होता है बच्चों का, उसमें उस बच्चे को सुनाया गया। और कहती मेरा बच्चा घर आके वो सेक्स एजुकेशन जो भी लेके आया तो माँ से आके पूछता, मामा ये सच है, मामा ऐसे ही होता है। तो वो मुझसे जो बात शेयर कर रही थी कि मैं भी इस मुल्क में पली हूँ, बट तरजीहात और प्रायोरिटीज कितनी बदल गई कि जो 7वें ग्रेड में बच्ची बच्चा है वो 8-9 साल का तो हो गई ना, तो वो चीज अब यहाँ 4-5 साल के बच्चे को सिखाई जा रही है। और आगे आउटलेट कोई नहीं, शादी आपकी होनी होनी 18 साल से पहले, आप जो मर्जी कर लें, तो आप ही दूसरों को रास्ते क्यों दिखाते हैं? बाहर वाले कुछ नहीं कर सकते आपके मेरे बच्चों का, क्योंकि आज के भी दौर में बहुत अच्छे बच्चे हैं, आज के दौर में अच्छी बेटियां, अच्छे बेटे, अच्छी माएं, अच्छी नानियां, दादियां बेशुमार हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हकीकत में ये बात आम है कि आज के बच्चे बेसब्र हैं। फिर ये जो बात कही कि आज के बच्चों में सब्र कम क्यों है, तो उसकी वजह यह कि माँ उसकी हर फरमाइश को पूरा करना अपना फर्ज समझती। बेटा आप क्या खाएंगे, बेटा क्या बनाओ, बेटा आप क्या पहनेंगे, अब 3-4 साल का बच्चा जिसको नाक नहीं पोछना आता, आप उससे पूछ रहे बेटा आप क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे, तो मुझे बताएं वो कभी भी चॉकलेट और च्युइंगम से और आइसक्रीम से आगे बढ़ेगा? वो तो नहीं कहेगा मामा करेले खाऊंगा और भिंडियां खाऊंगा। जो पकता था बच्चे भी खाते थे, बड़े भी खाते थे। मुझे एक माँ का जुमला कभी नहीं भूला, वो कहती है खाना है तो यही खाना है और नहीं खाना तो यही खाना है। सीख लिया तो खा लिया। आज कहती है अच्छा मैकडोनल्ड नो, उससे भी दिल भर गया। अच्छा वो KFC वो भी नहीं, नैंडोस वो भी नहीं, फलां भी नहीं, फ्रीजर सारा गया, मामा नथिंग टू ईट, घर में है ही नहीं कुछ खाने को। तो भाई आप नजर चेक कराएं, आई साइड चेक कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, फ्रिज बंद नहीं हो रही, फ्रीजर के अंदर एक्सपिरेशन चीजों की आगे जा रही है ही नहीं खाने को। वजह क्या कि रोज जो इतना देख लिया। वो कहते ना कि मिन्नतें तेरी करके मैंने तुझे बिगाड़ दिया। देखिए बच्चा वीक पॉइंट तो होता है, दिल तो करता होगा माओ का के सोने के लुक में खिलाऊं मैं, दूध शहर चक्कर खिलाऊं, लेकिन पौधे को बहुत पानी भी देना तो वो गल जाता है। बड़े कहते थे एक आंख से घूरो तो एक से मुस्कुराओ। एक वक्त बच्चे को डांटा ना तो अगले दूसरे ही लम्हे जाकर फिर थोड़ी देर बाद जाकर उसको गले भी लगा लो, ये बैलेंस चलता है। अब ये जो बात हो गई कि बच्चे की हर बात माननी, बच्चे हमेशा ठीक है, माँ बाप भी गलत होंगे, तो फिर बेसब्री तो आएगी। और मेरा दिल चाह रहा है कि आप कोई सवाल करें प्रैक्टिकली इसी मौजू से मुतल्लिक, जिससे शायद मेरा वो ऑब्जर्वेशन ना हो और मैंने उस मौजू पे बात ही ना की हो, जो आपके सवाल से सामने आ जाए, कुछ शेयर करें। जी आप यानी किसी बड़े ने ये कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएं दो मैं तुम्हें अच्छी नस्लें दूंगा, और किसी बुजुर्ग का मैंने पढ़ा था कि रोटी बनवा के दो 5-6 औरतों को, मैं हर एक की रोटी देख के उस औरत की शख्सियत बता सकता हूँ। देखिए जिसमें एग्रेशन है ना उसकी रोटी भी जोर जोर से झाड़ेगी, सूख, कुछ हाथों की रोटी सूख जाती है, कुछ की 2 दिन भी ढीली रहती है, अंदर की नरमी रोटी में आती है। नरम माँ से रोटी झाड़े कभी नहीं सूखेगी। और उसको गुस्से से बेलने, वो किसी और पे गुस्सा चल नहीं रहा, बेलने पे चलाए और मियाँ साहब का सास सबा का गुस्सा सारा रोटी पे गया, फौरन रोटी सख्त होगी। अच्छा बच्चों में भी यही दिखेगा आपको, मैंने देखा माँ सॉफ्ट है ना, माँ में तहम्मुल है ना, बच्चे भी सॉफ्ट हो गए। और जो माँ यार वो झुलझुलाई गुस्से में, और मैं सोचती हूँ जल्दी किस बात की है, क्यों हर वक्त बच्चों के ऊपर हमने इमरजेंसी आकर जल्दी करो ये करो वो करो उठा लो जल्दी करो उठते नहीं सो जाओ ये करो। अल्लाह के बंदो वो इंसान का बच्चा है, वो हॉस्टल में नहीं है, वो घर में है, थोड़ा सा उसको रिलैक्स पाले, उसकी अक्ल खोलने दे, उसको खुद समझ है मैंने गलत किया कि ठीक किया। और अब हर वक्त यस नो डूज डोंट्स। फिर एक छोटा सा इश्यू भी याद रखे, कभी कभी बच्चा हमें बड़ी देर से मिलता, मतलब वो कहना चाहिए जैसे घर में पहला पोता, अक्सर माएं अपने आखिरी बेटे का नाम लेके कहती उसके बाद अब घर में अब बच्चा है, अब उसको बिगाड़ रहे हैं, लाड देख रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उठाए उठाए फिर रहे हैं, वो भी अब नॉर्मल हो जाएगा। एक जुमला जो माओ को तो बड़ा ही जहर लगना है, अपने बच्चों पे नजरें लगाना छोड़ दें, मत देखें ज्यादा, ना देखें उनको, सोए हो तो प्यार कर लें, जितना मर्जी चूम लें उनको, पर उनकी होश में अगर आपने हथेली का छाला बनाया ना तो वो फिर आपको एक दिन जरूर अपना आप दिखाएंगे।
जी आप कह रही थी ना कि जैसे कि बाप का असर बच्चों पे बहुत होता है कि जो बाप करे तो फिर लड़कों पे, लेकिन मैंने ये भी देखा कि फैमिली में क्योंकि बाप तो बाहर होता है या जॉब वगैरह में मसरूफ होता है तो ज्यादा जो है वो माँ का होता है ना बच्चों के साथ, लेकिन मैंने ये भी देखा कि अगर माँ खूब ड्रामे देख रही है बैठ के, फिल्में देख रही है बैठ के, तो फिर बच्चे भी वही फॉलो करते हैं। और हमने बल्कि मैंने खुद देखा कि वो बच्चे कहाँ जी ऊपर है, तो मैंने कहा शायद वैसे ही होंगे, तो वो देखा ऊपर तो ऊपर फिल्म देख रहा था खुद ही लगा के, क्योंकि उसे पता है कैसे रोज लगानी है, माँ कैसे देखती है, तो मैंने तो फिर बाप का मेरा ख्याल माँ का ज्यादा,
माँ का तो ज्यादा असर है। बाप अगर रिस्क अच्छा ले, देखिए दो चीजें हैं कि बाप का रिस्क बच्चे के काम आता है, हलाल कमाई होगी ना बच्चों के अंदर निकी जाएगी, बाप की कमाई में अगर कोई खतरा है कोई खराब चीज है ना उसका भी असर आता है, और माँ की तरबियत। बाप बेचारे तो सारे दिन के बाहर आते हैं, बापों पे बहुत जिम्मेदारी नहीं आती, जिम्मेदारी ये माओं पे ही है, तो दोनों मिल जाए तो फिर इंशाल्लाह सोने पे सुहागा।
तो बाप यही है कि तालीम से ज्यादा तरबियत पे है।
बिल्कुल तो हम सब दुआ कर लेते हैं। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين।